ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद्भागवतम दशवां स्कंध तीसरा अध्याय, अध्याय का नाम है कृष्ण जन और श्लोक संख्या 18। या आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स व्यतिरेकतो अबुद्ध विनानुवादं न च तन्मनीषितम् सम्यग्यतस्याक्तमुपपादुमाना। याद्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्या व्यतिरेकतो अबुद्ध विनानुवादं न च तन्मनीषितम् सम्यक् त्यक्तमुपादत् पुमानः।
बोलिए प्लीज।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यह जो भी आत्मनः आत्मा का दृश्य गुणेषु शरीर इत्यादि दृश्य पदार्थों में से सना उस अवस्था को प्राप्त इति इस प्रकार व्यवस्यते कर्म करता रहता है स्व्यतिरेकता मानो शरीर आत्मा से स्वतंत्र है अबुद्धा धूर्त मूढ़ बिना अनुवादम समुचित अध्ययन के बिना ना नहीं च भी तत् शरीर तथा अन्य दृश्य वस्तुएं मनीषितम विवेचन किया हुआ सम्यक पूरी तरह यतः मूर्ख होने के कारण त्यक्तम तिरस्कृत कर दिए जाते हैं उपाददत इस शरीर को वास्तविकता मान बैठता है पुमाना मनुष्य जो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बने अपने दृश्य शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है वह अस्तित्व के आधार से ही अनजान होता है और इसलिए वह मूढ़ है। जो विद्वान है वे इस निर्णय को नहीं मानते क्योंकि विवेचना द्वारा यह समझा जा सकता है कि आत्मा को आत्मा से निराश्रित दृश्य शरीर तथा इंद्रियां सारहीन हैं। यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया है किंतु मूर्ख व्यक्ति इसे सत्य मानता है। तात्पर्य आत्मा के मूलाधार के बिना शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता। यद्यपि तथा कथित विज्ञानियों ने अपनी अपनी रासायनिक प्रयोगशालाओं में सजीव प्राणी को उत्पन्न करने के नानाविध प्रयास किए हैं किंतु वे ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि जब तक आत्मा विद्यमान नहीं होता तब तक भौतिक तत्वों से शरीर निर्मित नहीं किया जा सकता। चूंकि वैज्ञानिक शरीर की रासायनिक रचना के विषय में जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं उनके प्रति अब मुग्ध हैं अतः हमने अनेक विज्ञानियों को ललकारा है कि वे एक छोटा सा अंडा तो बनाकर दिखला दें। अंडे के रासायनिक पदार्थ सरलता से उपलब्ध किए जा सकते हैं उसमें एक सफ़ेद अंश होता है और एक पीला अंश यह एक आवरण से ढके रहते हैं और आधुनिक वैज्ञानिक सरलता से इसकी नकल कर सकते हैं। माना कि ऐसा वे अंडा बना भी लें किंतु जब उसे वे इनक्यूबेटर के भीतर रखते हैं तो इस मनुष्य निर्मित रासायनिक अंडे से मुर्गी के चूजे नहीं निकलते। इसमें आत्मा का योग होना ही चाहिए क्योंकि जीव केवल रासायनिक संयोग नहीं है अतः जो लोग सोचते हैं कि आत्मा के बिना जीवन का अस्तित्व हो सकता है, उन्हें अबुद्ध या मूर्ख कहा जाता है। पुनः कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शरीर को अपर्याप्त समझकर शरीर का तिरस्कार करते हैं, वे भी मूर्खों की ही श्रेणी में आते हैं। इस शरीर का ना तो तिरस्कार किया जा सकता है, ना ही इसे पर्याप्त कहकर स्वीकार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान तथा शरीर एवं आत्मा भगवान की ही शक्तियां हैं, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवद गीता 7:4-5 में किया है। भूमि आपो अनल वायु खम मना बुद्धि च अहंकार मितिये में भन्ना प्रकृति अष्टधा अपराय में तो स्तौन्या प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो यदम धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार से मेरी 8 विभिन्न भौतिक शक्तियां हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इस अपरा शक्ति के अतिरिक्त भी मेरी एक परा शक्ति है जो इन समस्त जीवों से युक्त है, जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को बनाए रखे हुए हैं। अतएव शरीर का भगवान से वैसा ही संबंध होता है जैसे आत्मा का होता है। चूंकि दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, अतएव इनमें से कोई भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि इन उनका आगम वस्तुओं में होता है। जो जीवन के इस रहस्य को नहीं जानता वह अबुद्ध कहा जाता है। वैदिक आदेशों के अनुसार एतादमयम इदम सर्वम सर्वम खलम इदम ब्रह्म, सारी वस्तुएं परम ब्रह्म हैं। अतएव शरीर तथा आत्मा दोनों ही ब्रह्म हैं, क्योंकि पदार्थ तथा आत्मा ब्रह्म से उद्भूत हैं। वेदों के निर्णयों से ज्ञात ना होने के कारण कुछ लोग भौतिक प्रकृति को पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ लोग आत्मा को पदार्थ मानते हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्म ही पदार्थ है। ब्रह्म समस्त कारणों का कारण है। इस जगत के अवयव तथा कारण ब्रह्म हैं, और इस जगत के अवयवों को हम ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं रख सकते। साथ ही चूंकि इस भौतिक जगत के अवयव तथा इसका कारण ब्रह्म ही हैं, अतः ये दोनों ही सत्य हैं। अतः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या व्यक्तव्य की कोई वैधता नहीं है, यह जगत मिथ्या नहीं है। ज्ञानी लोग इस जगत का निषेध करते हैं और मूर्ख लोग इसे सत्य मानते हैं। इस तरह दोनों ही दिग्भ्रमित रहते हैं। यद्यपि आत्मा की तुलना में शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हम यह तो नहीं कह सकते कि यह मिथ्या है। फिर भी शरीर नश्वर है, और जो मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति हैं जिन्हें आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, नश्वर शरीर को सत्य मानकर उसको सजाने संवारने में लगे रहते हैं। शरीर को मिथ्या मानकर उसका निषेध तथा शरीर को सर्वस्व माना, इन दोनों दोषों से बचा जा सकता है यदि कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त कर लिया जाए। यदि हम इस जगत को मिथ्या मानते हैं तो असुरों की कोटि में आ जाते हैं, जो ये कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका आधार नहीं है और ईश्वर इसका नियंत्रक नहीं है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहु अनिश्वरम, भगवद गीता के 16 अध्याय में ऐसे असुरों का निर्णय कहा। हरे कृष्णा, आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और अध्याय का नाम है कृष्ण जन्म। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के समक्ष कंस के कारागार में प्रकट हो गए, और प्रकट होते उन्होंने अपने षड ऐश्वर्यों को प्रकट किया। चतुर्भुज रूप में सुंदर घुंघराले बाल, पीताम्बर धारण किया हुआ, तरह तरह से मणियां और आभूषणों से सुसज्जित, और आते ही वसुदेव को आदेश भी दिया कि मुझे गोकुल में ले जाओ। और जब ये सब देखा तो पहले तो देवकी और वसुदेव बड़े चिंतित हुए कि कंस इनका भी वध कर देगा, लेकिन फिर भगवान के चतुर्भुज रूप को देख के वो आश्वासित हो गए कि ये वही विष्णु हैं जिनकी हमने आराधना की थी, जिनके लिए हमने तपस्या की थी। और फिर वसुदेव प्रार्थना करनी शुरू करते हैं। वसुदेव को ये भी ज्ञात है कि ये स्वयं भगवान हैं, और ये भी मालूम है कि मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो वात्सल्य रस और ऐश्वर्य से मिश्रित होकर प्रार्थना शुरू करते हैं, और 13वें श्लोक से प्रार्थना शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि भागवतम में जब भी भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, जो इस भौतिक जगत में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं, तो अधिकांशतः भक्त हम भागवतों में देखते हैं कि पहली प्रार्थना यही करते हैं कि आप इस भौतिक जगत में तो आए हैं, लेकिन भौतिक जगत के नहीं हैं, आप इस सृष्टि से परे हैं, 3 गुणों से परे हैं। तो इन कुछ प्रार्थनाओं में यही प्रसंग चलता रहेगा कि आप सत्वगुण रजोगुण 3 गुणों से परे हैं, आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करते हैं, आप ही संहार करते हैं। और कर्ण के श्लोक में बता रहे थे कि हालांकि आप देवकी के घर में प्रकट हुए हैं, लेकिन आप क्योंकि सर्वव्यापी में हैं, इसलिए आप देवकी के घर में पहले से ही थे, तो इसलिए आप प्रकट भी नहीं हुए। और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से 5 तत्व हर जगह व्याप्त हैं, जब कोई शरीर सामने आता है हम सोचते हैं कि ये 5 तत्व अब प्रकट हुए हैं, जिस तरह से भौतिक तत्व हमेशा ही रहते हैं, इस प्रकार आप भी हमेशा रहते हैं। आज के श्लोक में बताया जा रहा है, अगर कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सृष्टि के पीछे भगवान है, भगवान ही सब कारणों के कारण है, तो उसकी क्या स्थिति है? तो बोले या आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्नति, जो गुणों से उत्पन्न दृश्य वस्तुओं को ही सब कुछ मानता है और व्यवस्थित इसी चेतना में काम करता है, स व्यतिरेकतो, यानी कि जो आत्मा है, जो शरीर है, आत्मा से अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं। या फिर इस पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा बोले जाते हैं गर्भो दक्षाई विष्णु, यानी कि पूरी की पूरी प्रकृति अपने आप में स्वयं चल रही है, इसके पीछे कोई आत्मा परमात्मा कोई स्पिरिट नहीं है, वो क्या है? अबुद्ध, वो मूर्ख है। प्रभुपाद ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं अपना फेवरेट वर्ड, रास्कल है वो, रास्कल है। बिना अनुवादम, वो बिना किसी चर्चा के, बिना किसी अध्ययन के, चाना तंते सन्मिश्रितम, और बिना कोई विवेचना किए हुए, और जबकि इसको सम्यक यतः त्यक्तम, बड़े बड़े भक्तों ने, विद्वानों ने इसको पूर्ण रूप से त्याग दिया कि बिल्कुल बोगस फिलॉसफी है, ये धूर्तों की सिद्धांत है, बिल्कुल त्याग दिया, फिर भी उपाददत्त पुमान, उसको बड़ी वास्तविकता मान के पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, ये शरीर ही अपने आप में सब कुछ है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा का कोई आधार नहीं है, शरीर और ये प्रकृति अपने आप प्रकट हुई है। तो प्रभुपाद का बहुत ही जोर शोर से ये इसका तात्पर्य है, और प्रभुपाद ने तात्पर्य में दो प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया है। पहला सिद्धांत कि जीवन पदार्थ से आता है ना, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, और दूसरा सिद्धांत निर्विशेषवाद का कि आत्मा ही सर्वव्यापी है, आत्मा परमात्मा एक है। हालांकि श्लोक में खाली यही इसका खंडन किया गया है कि जीवन पदार्थ से आता है, लेकिन प्रभुपाद जी को हमेशा मायावाद खंडन करने में इतना उत्साह रहता है कि जहां मौका मिलता है प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन करते हैं। तो ये दो सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे, और मुख्यतः हम ये चर्चा करेंगे कि इन दो सिद्धांतों का हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और वास्तविक सिद्धांत क्या है। देखिए, इस जीवन में, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी सिद्धांत पे अपना जीवन बिता रहा है, उसके जीवन शैली के पीछे कुछ ना कुछ फिलॉसफी जरूर है। कोई बोले नहीं नहीं मैं इतना सोचता फिरता नहीं हूँ, मेरे जीवन की कोई फिलॉसफी नहीं है, मैं तो ऐसे जीता हूँ जैसे मनाए करता हूँ, तो ये भी अपने आप में एक फिलॉसफी है कि मैं किसी फिलॉसफी को फॉलो नहीं करता। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी सिद्धांत को जाने अनजाने में उसका पालन कर रहा है, उसको अपने जीवन में उतार रहा है। तो यहाँ जो सबसे प्रचलित फिलॉसफी है कि शरीर ही सब कुछ है ना, शरीर को सुखी बनाओ आप सुखी हो जाओगे, है ना, और ये जीवन जो है पदार्थ से आया है, मैटर से आया है। तो आजकल आप लोगों को सुन के ये बड़ा अचंभा लगे, कैसे हो सकते हैं, तो गलत बात कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि बचपन से हमें यही पढ़ाया गया है। बचपन से हमें जो जीव विज्ञान बताया गया, बायोलॉजी सिखाई गई, फिजिक्स सिखाई गई, साइंस जो बताई गई, बचपन से यही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि ये जो पूरा संसार है भगवतहीन है, इसमें कोई भगवान का लेना देना है ही नहीं, सारा का सारा संसार की रचना पदार्थ से हुई है। ये तो सौभाग्य की बात है, हमारा जन्म भारत में हुआ, तो हम ये सब सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, इसका रट्टा भी लगाते हैं, एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन अंदर से मानते नहीं है इस बात को। ये तो हमारा सौभाग्य है कि भारत के संस्कार, वैदिक संस्कृति इतनी गहरी है, यहाँ पे हमें मालूम है कि अगर बायोलॉजी का पेपर देने में जाते थे जिसमें डार्विन की थ्योरी के ऊपर हम लिखते थे, उसको जाने से पहले भी हम भगवान से प्रार्थना करके जाते थे कि डार्विन की थ्योरी को सही ढंग से लिख सके, है ना, जबकि डार्विन कह रहे हैं भगवान है ही नहीं, और हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे डार्विन की थ्योरी का हम सही ढंग से कर सकें। ये तो हमारे संस्कार हैं गहरे, केवल उसको ले लिया, लेकिन ये बात हमारे फिर भी जहन के अंदर चली गई है, ये हमारी जीवन शैली से, पूरे सोसाइटी जिस ढंग से चल रही है उसमें साफ साफ प्रकट होता है। तो हम कुछ लक्षण क्या हैं, देखिए कि बस आप शरीर ही सब कुछ है, शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म, अगला जन्म किसने देखा कोई पता नहीं, जब तक इंजॉय कर सकते हो करो, पूरा नास्तिकवाद की फिलॉसफी है, इसको कर्म मीमांसा भी कहते हैं, कर्म ही पूजा है, जब तक कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करो, भोग करो खूब, और फिर पता किसने देखा है ना। और इन सब के नेता थे हमारे वैदिक संस्कृति में चार्वक मुनि, है ना, वो कहते थे खुश रहो बस, सुखी रहो, ये जीवन का सबका लक्ष्य है, क्या ऋणम कृत्वा घितम पिबेत, आपको घी पीना चाहिए, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है तो चोरी करो, उधार लो, भीख मांगो, नहीं पियो घी बढ़िया, है ना, ऋणम कृत्वा घितम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। तो बोलेगा ऐसे मैं चोरी करके उधार लेके जाऊंगा तो भरना तो मुझे ही पड़ेगा, क्या भरने की जरूरत है, भस्मी भूतस्य देहस्य, शरीर जल जाएगा, किम पुनः आगमन भवेत, किसने वापस आना है, ले लो ऋण ले लो और आराम से शरीर त्याग दो, सब भूल जाओ किसने क्या किया, भूल खत्म, चोरी जकैती जो भी करो लेकिन बढ़िया जो सुख से जियो, अच्छी फैसिलिटीज होने चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं चरवक मुनि में फिर भी कोई चरित्र था, घी की बात कर रहे हैं, आजकल लोग तो मीट की बात करेंगे और दारू की बात करेंगे, फिर भी घी तो अच्छी बात है, चलो। तो ये सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत से क्या होगा, सबसे पहला है कि जस्ट इंजॉय, खूब इंजॉय करो, है ना, और इस समाज में जो जितना ज्यादा इंजॉय कर सकता है वो उतना ज्यादा सफल व्यक्ति है, वो हमारा आदर्श बन जाता है। जो बड़े हॉलीवुड स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं तो वो हमारे आदर्श बन गए। आज एक क्रिकेट स्टार ने दाढ़ी रखी, सारी युवाओं ने दाढ़ी रखनी शुरू कर दिया ना, उसमें गर्मी लगे या कीड़े पड़े कोई दिक्कत नहीं, दाढ़ी चल रही है तो दाढ़ी होनी चाहिए, है ना। जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव बलदेव श्री जय, सब जिसको देखो बुरा मत मानिए, मतलब कि जिसको देखिए, है ना, क्यों आदर्श रोल मॉडल है ना। आज से पहले बॉलीवुड स्टार के हीरो चॉकलेट हीरो कहलाते थे, क्लीन शेव, सब क्लीन शेव थे, बड़े बड़े बाल होने सब बड़े बड़े बाल रखने लगे, छोटे बाल तो सब छोटे बाल करने लगे। जैसे जो ज्यादा भोग कर रहा है वो हमारा आदर्श है, बस वैसा ही बनना है। तो आप देखते हैं कि इसलिए क्या होता है, कंपटीशन है, मुझे ज्यादा भोग करना है, ज्यादा भोग करना है, और इसी के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है। आपको शायद आपने सुना होगा अमेरिका में एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं हॉलविन फेस्टिवल, अक्टूबर एंड में होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो जितने भी बच्चे हैं वो एक नया नया कॉस्ट्यूम डालते हैं, जैसे फैंसी ड्रेस शो कह लीजिए, और उसमें वो ड्रेस डालते हैं उस चरित्र की जो वो नहीं है, है ना। तो अधिकांशता जो सबसे ज़्यादा ड्रेसेस बिकती हैं वो किसी स्पोर्ट्स स्टार की, बेसबॉल स्टार की, फुटबॉल प्लेयर की, या कोई हॉलीवुड स्टार की या एक्ट्रेस की, वो सबसे ज़्यादा बिकती थी। हुआ क्या, जब 11/9 इंसिडेंट हुआ, 9/11 जब वर्ल्ड ट्रेड टावर में वो घटना घटी, तो उसमें क्या हुआ था कि जो फायरमैन थे उन्होंने बहुत जानबाज लगा के लोगों के अंदर घुसे और कुछ लोगों की जान बचाई, अपनी जान भी खो दी। तो उस दिन जब ये हॉलविन फेस्टिवल हुआ तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट्यूम बिके वो फायरमैन के कॉस्ट्यूम बिके, वो हीरो बन गए, पहली बार लोगों ने सोचा इंद्रतृप्ति से परे कुछ। और एक और परिवर्तन आया उसमें कि जो 9/11 के बाद पूरे समाज में एक परिवर्तन ये देखा गया, अधिकांशतः हम देखते हैं इंटरनेट के ऊपर कीवर्ड को आप सर्च करेंगे, कोई भी कीवर्ड आप टाइप कीजिए उसको सर्च करें, तो आपके हिसाब से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द कौन सा होगा इंटरनेट के ऊपर, साधारण समय में सबसे ज्यादा कीवर्ड जो उसको लोग ढूंढते होंगे, आतंकवाद, अवैध संबंध, सेक्स, सबसे ज्यादा ये हमेशा टॉप 5 में तो रहेगा ही रहेगा इसमें। लेकिन हैरानी की बात है पूरे अमेरिका में इस 9/11 इंसिडेंट के बाद सबसे जो टॉप में शब्द था वो था गॉड, रिलीजन, कंपैशन, है ना। इसका मतलब इसके बिना हमारी कोई गति है नहीं, है ना। प्रहलाद महाराज भी यही बोलते हैं अपने प्रार्थनाओं में नरसिंह भगवान के, कि देहात्म बुद्धि में लिप्त होकर लोग आपकी अवहेलना करते हैं और सोचते हैं कि अपना सुधार खुद कर पाएंगे, और तरह तरह के उपाय भी ढूंढते हैं, उनके उपाय हमें कुछ तो समय के लिए कुछ लाभ देते हैं लेकिन वो अपना सुधार कभी नहीं कर पाते। और वो तीन उदाहरण देते हैं कि माता पिता जितना मर्जी प्रयास करें अपने बच्चे को बचा नहीं सकते, है ना, और डॉक्टर वैद्य जैसी मर्जी क्यों ना औषधि दे दे वो गारंटी नहीं दे सकता कि जो बीमार व्यक्ति है ठीक हो जाएगा, और बीच समुद्र के बीच में एक नाविक के गारंटी नहीं दे सकता कि समुद्र पार कराऊंगा ही कराऊंगा बिना आपके हस्तक्षेप के, बिना भगवान की कृपा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो जब अमेरिका में ऐसा क्राइसिस आया तब उनको लगा हाँ भाई कोई तो होगा इससे परे, अन्यथा भोग करो, केवल भोग करो और कुछ नहीं। तो ये क्यों ये मेंटेलिटी है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के पीछे आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। क्यों लोग नहीं मानते आत्मा के अस्तित्व को, वो सोचते हैं आत्मा आप दिखा तो सकते नहीं, ये कैसे आत्मा है, लेकिन आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं चेतना से, जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ में आत्मा का ही अंतर है। ऐसे तो हम बहुत सी चीजें नहीं देख सकते। क्या हम अपने विचारों को देख सकते हैं? उन विचारों से व्यक्ति पागल भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। क्या हम विचारों को बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, विचार हैं, विचारों से बड़ी बड़ी क्रिएशंस हो जाती हैं। तो इसलिए आत्मा है और आत्मा की अनुभूति हम चेतना से कर सकते हैं। तो ये एक पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव हम देखते हैं कि हालांकि लोग भोगने का प्रयास कर रहे हैं, सुखी रहने के लिए कर रहे हैं, हर कार्य अपने दुखों को मिटाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस धारणा के साथ कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, लोग और ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं, दुख और बढ़ते जा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, हमारे प्रयास हैं सुख के लिए और मिल रहा है और दुख, तो कितना और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता होगा। और उस फ्रस्ट्रेशन को, कुंठा को दूर करने के लिए और भोग का प्रयास और बड़े दुख, तो समझ नहीं आ रहा लोगों को। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, क्या करें, है ना। इसलिए इतने सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आपको जान के हैरानी होगी, भारत में प्रतिदिन 371 सुसाइड हो रहे हैं। एक घंटे में 16 सुसाइड, जब तक एक क्लास खत्म होगी, एक घंटे में 16 व्यक्ति सुसाइड कर गया, एवरेज इतना ज्यादा है। और मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं भारत में 16% है पूरे विश्व के, 30 करोड़ पूरे भारत, पूरे विश्व में है डिप्रेशन और पागलपन के केस, भारत में 5 करोड़। कितना बढ़ता जा रहा है इसी मानसिकता के कारण। खूब भोग करें, भोग करें, भोग मिलता नहीं और उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। क्या आत्मा के अस्तित्व को, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे। तीसरा क्या करते हैं, भोग करना है तो प्रकृति का शोषण करो, है ना। सारा अपने हाथ में ही है, मैं नियंता हूं, मुझे शरीर को सुख पहुंचाना है, प्रकृति के पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, जहां से रिसोर्सेज मैं भोगूंगा, और हम प्रकृति का शोषण करते हैं और प्रकृति फिर रिएक्ट करती है। क्या आज से 20 साल पहले हमने सुनामी का शब्द भी सुना था? पहली बार सुनामी शब्द सुना, क्या है ये सुनामी, क्या है उसकी स्पेलिंग भी उल्टी सीधी है कोई ना, सीधी सीधी नहीं है। क्यों? समुद्र में जाके ऑयल वेल ढूंढ रहे हैं, इतना ड्रिलिंग कर रहे हैं, समुद्र के ऊपर ऑयल को फेंक देते हैं जिससे कि कई मछलियों की हत्या हो जाती है। ये सारे रिएक्शन मिल रहे हैं, सुनामीज आ रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। अभी मुझे शंकर सिंधाई प्रभु ने 2 दिन पहले मेल भेजा, बताया जो हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं आजकल, पूरे विश्व में एक नया तरह का पॉल्यूशन शुरू हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का पॉल्यूशन। ये बड़े बड़े टॉवर्स हैं जो हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन इत्यादि यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन एटमॉस्फेयर में आ गई हैं कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो असंतुलित हो गया है। इससे सबसे बड़ा हानि हो रही है पक्षियों को। आपने देखा होगा बेचारी जो छोटी सी चिड़िया होती है गायब हो गई है, पूरे विश्व में चिड़िया गायब हो गई है। इसको एंडेजेंट स्पीसीज यानी कि स्पीसीज खत्म हो गई, पहले कितनी चिड़िया घूमती रहती थी, चिड़िया गायब। और जो बड़े बड़े पक्षी हैं उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी प्रजनन की सक्रिया खत्म हो जाती है और वो अपनी दिशा भूल जाते हैं, इसलिए उनका जीवन भी कम होता जा रहा है। और क्योंकि ये पक्षी कम होते जा रहे हैं, जो पक्षी कीट मकोड़े खाते थे वो अब ज़्यादा बढ़ गए और वो फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और फिर उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज किया जाता है और पेस्टिसाइड वाला खाना हम खाते हैं और फिर हमें कैंसर होता है। कहाँ से शुरू हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। कहाँ हुआ? बड़ी एक तरक्की कर ली, एडवांसमेंट कर ली, क्या बड़े नए स्मार्टफोन आ गए। प्रभुपाद कहते हैं ये साइंटिफिक एडवांसमेंट एडवांसमेंट नहीं है, ये पूरा अनसाइंटिफिक एडवांसमेंट है। मनुष्य जीवन मिला है मृत्यु का समाधान करने के लिए, और यहाँ पे एटम बॉम्ब जो ढूंढ लेता है उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। एटम बॉम्ब से तो मृत्यु और तेजी से आएगी, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो जिसको नोबेल प्राइज मिल रहा है और जो नो नोबेल प्राइज दे रहे हैं, दोनों ही गधे हैं एक नंबर के। इतने क्रोध में पवन, दे आर रास्कल, दे आर एसिस, किस लिए नोबेल प्राइज दे रहे हो? और अत्याचार बढ़ाने के लिए। तो प्रकृति का शोषण हम करते हैं तो इसीलिए संसार में इतने सारे दुख आ रहे हैं। तो ये तीसरा हम देखते हैं कि संसार में सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद कोई आपसी संबंध नहीं रह गए, किसी पे कोई विश्वास नहीं रहा। अब पुरुष और स्त्री आपस में विश्वास कर नहीं सकते, तो बोले क्या करें, एक रोबोट बना लेते हैं, रोबोट से विवाह कर लेते हैं। वो हमेशा बोलता तो रहेगा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बढ़िया, कर सकते हैं रोबोट से विवाह, है ना। बीच में थोड़ा मिर्च मसाला डालना, थोड़ा झगड़ा भी कर लेगा, फिर बोल देगा आई लव यू, आई लव यू। बढ़िया रोबोट से विवाह करो, लेकिन लोग करते नहीं है क्यों? इमोशंस चाहिए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए। लेकिन क्यों नहीं करते आप रोबोट से विवाह जब सारा कुछ केमिकल्स ही है? नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि आप विदेशों में कैसा कैसा पागलपन हो गया जो तुरंत भारत में भी आ ही जाएगा। आप लोग किसी पे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। एक जापान के लड़के ने विवाह किया एक सराहने के साथ, पिलो के साथ। पिलो के ऊपर एक स्त्री का चित्र बना दिया, जहां जाता उसको लेके जाता है, ये मेरी वाइफ है। रेस्टोरेंट में जाता है, एक कुर्सी उसको बैठाता है, एक कुर्सी खुद बैठता है, दो प्लेट ऑर्डर करता है, एक खाता है, दूसरा वेटर खाता है, पिलो तो खाएगा नहीं, है ना। पिलो के साथ, ये मेरी वाइफ है, उसको जाके घूमता है। एक यंग लड़की है, उसने शादी किया एफिल टॉवर से, वो अपने को बोलती है मैं मिसिज एफिल हूँ। ये धोखा नहीं देंगे ना, एफिल टॉवर धोखा देगा क्या? पिलो को जो मर्जी कर लो, ऊपर फेंको नीचे फेंको, चुपचाप हंसता ही रहेगा चेहरा उसका। और एक ने शादी किया रोलर कॉस्टर से, वो इतना एक्साइटिंग देता है रोलर कॉस्टर, कोई जीवन व्यक्ति इतना एक्साइटमेंट नहीं दे सकता। तो शी इज कॉल्ड मिसिज रोलर कॉस्टर। क्यों? पदार्थ से जीवन है, जीवन तो आत्मा तो है नहीं कोई, तो कोई रिलेशनशिप नहीं रह गया, किसी पे कोई विश्वास नहीं रह गया। व्यक्ति पदार्थ पे ज्यादा विश्वास करते हैं ना। पीपल आर लविंग थिंग्स एंड यूजिंग पीपल, ये राधानाथ महाराज का फेवरेट कोट है ना। जब हमें क्या करना चाहिए, वी शुड लव पीपल एंड यूज थिंग्स इन द सर्विस ऑफ द गॉड। लेकिन आजकल लोग चीजों से प्रेम करते हैं, है ना। चाइना में एक स्त्री ने जो कि बड़ी निर्धन थी, लेटेस्ट आईफोन लेने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। आईफोन से जो खुशी मिलेगी बच्चे को, तो संभालना पड़ेगा, रोता रहेगा। मुझे रोने की आवाज सुने, एक नया ऐप यूज कर लूंगी, बच्चे की रोने की आवाज आ जाएगी, बच्चे की क्या जरूरत है उसको। ये जीवन चल रहा है। और ऐसे में भी व्यक्ति क्या है, बहुत भयभीत है। जो पांचवा क्या है, पूरा संसार डरा हुआ है, क्योंकि देहात में चेतना में तो डर लगेगा ही लगेगा। भयम द्वित्यम अभिनिवेश स्यात्। द्वितीय का अर्थ है हमारी दूसरी पहचान। पहली पहचान क्या है, मैं आत्मा हूं, दूसरी पहचान मैं शरीर में हूं। तो जितना इस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, हमेशा भयभीत रहेंगे। और इस शरीर से जुड़ी हुई चीजों से आइडेंटिफाई करेंगे, कोई छीन ना जाए, हाथ से निकल ना जाए, तो हमेशा भयभीत रहेंगे, तो भय बना रहता है। और दूसरा छठा, कोई कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट नहीं रह गया, कोई किसी का आदर करने की आवश्यकता ही नहीं। मेरे पास पदार्थ है, मेरे पास लेटेस्ट गैजेट्स हैं, इससे मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। कोई बड़ों के लिए, गुरु के लिए, माता पिता के लिए कोई आदर की भावना खत्म, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारा का सारा इसी से आ रहा है। और हम देखते हैं ऐसे में क्या, बहुत ही पापमय जीवन बिता रहे लोग। पाप करने से व्यक्ति डरता नहीं, क्योंकि अगला जीवन तो है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगला कोई शरीर मिलेगा, कर्म बंधन में व्यक्ति फंसता जाएगा, उसके उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, है ना। तो ये सारे के सारे 6-7 इफेक्ट्स हमने बताए, और भी हम चर्चा कर सकते हैं। ये केवल इसी फिलॉसफी पे है कि जीवन पदार्थ से आता है, और हम सब अपने अपने जीवन में भी ये महसूस कर सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। इसलिए जीवन पदार्थ से आता है, इसका मतलब, इसका इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आनंद पदार्थ से प्राप्त होता है। जीवन का मतलब आनंद, यानी कि आनंद संबंधों से प्राप्त नहीं होता, आनंद सुविधाओं से प्राप्त होता है। तो जितनी ज्यादा सुविधा बटोर लूंगा, उतना ज्यादा मैं सुखी रहूंगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे समाज में चल रहा है, हम सबकी मानसिकता में है। ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा भोग की सुविधाएं होंगी, तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन भगवान गीता में बता रहे हैं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन्या एवते आदि अंतवंतु के अंत्या नातेषु रमते पुथा। ये दुख का कारण है, ये सुख का, सुख को जन्म नहीं देते। तो ये तो पहले फिलॉसफी प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं। दूसरी फिलॉसफी प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भोग 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 करने के प्रयास में बिल्कुल उदास हो जाता है, रुष्ट हो जाता है और परेशान हो जाता है, फिर वो कहता है शरीर है ही नहीं, बेकार है, सब कुछ क्या है, आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। फिर क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सब कुछ नकार दो, बेकार है सब, है ना। और इस शरीर के हर कार्य से मैं दूर रहूंगा, मैं ब्रह्म हूं। इस समय मैं भ्रम में पड़ गया हूं, मैं ब्रह्म हूं लेकिन भ्रम में हूं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा, इस भ्रम को मैं तोड़ दूंगा, इस पूरे संसार को मैं त्याग दूंगा, तो मैं भगवान बन जाऊंगा। हम सब क्या है, भगवान है। तो वो क्या करते हैं कि भ्रम से निकलने के लिए इस संसार को त्यागते हैं और एक और बड़े भ्रम में चले जाते हैं कि मैं भगवान हूं। प्रभुपाद कहते हैं अपने आप को भगवान बनना माया की अंतिम चाल है, लास्ट स्नेयर ऑफ माया। व्यक्ति अपने आप को भगवान माने। तो ये संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है, इसलिए सारे कंफ्यूजन है। भागवतम के 11वें स्कंद में उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक स्टेज पर एक जादूगर है, वो टोपी में से खरगोश निकाल देते हैं। जो दिखने वालों को तो लगता है टोपी में से खरगोश निकला, तो वास्तव में निकलता है क्या? वो भ्रम है। टोपी में से खरगोश का निकलना भ्रम है। लेकिन क्या वो स्टेज भ्रम है? नहीं। क्या वो जादूगर भ्रम है? नहीं। क्या वो टोपी भ्रम है? नहीं। क्या वो खरगोश भ्रम है? नहीं। क्या भ्रम है? टोपी में से खरगोश निकला, ये भ्रम है। इसी प्रकार से भगवान की बहिरंगा शक्ति का ये जादू है, ये जो स्टेज है भौतिक जगत है, ये भ्रम नहीं है। भगवान की बहिरंगा शक्ति वो जादूगर है, वो भ्रम नहीं है। और ये शरीर मैं शरीर है, ये भ्रम नहीं है। आत्मा है, ये भ्रम नहीं है। ये आत्मा इस जगत की है, ये भ्रम है। मैं अपने आप को जब ये शरीर मान लेता हूं, इस संसार का मान लेता हूं, ये भ्रम है। तो इसलिए ये संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है, तो लोग समझते हैं कि हम पूर्ण रूप से इस सारी शारीरिक क्रियाओं को त्याग देंगे तो हम खुश रहेंगे। तो इसके क्या क्या कुप्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन में, इसमें क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, तो इसको निर्विशेष बात बोलते हैं कि हम सब एक हैं। तो इसमें दासत्व की भावना खत्म हो जाती है कि हम भगवान के दासों के दासों के दास हैं, मैं भगवान हूं। और इसमें भी क्या है, यूज एंड थ्रो है कि गुरु जी को यूज किया, गुरु जी से ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको धक्का मारा और आगे हम भगवान बन गए। और फिर नारायण को, पहले नारायण की पूजा की, किसके लिए? नारायण बनने के लिए। भगवान को भी यूज किया अपने लिए कि हम भी नारायण बन जाएंगे, इसलिए आपको करते हैं। आप देखते हैं कई मायावादी होंगे जो हरे कृष्ण महामंत्र भी करते हैं, नाचेंगे गाएंगे सब कुछ वैसा ही लगेगा, लेकिन क्या है वो कि चैतन्य पथ शंकर मत। पथ क्या है? मार्ग है चैतन्य महाप्रभु का, और मत कौन सा है? शंकराचार्य जी का। तो बहुत खतरनाक। तो इसलिए क्या है, ये भी यूज एंड थ्रो है, अपने लिए यूज करना, और कोई दासत्व की भावना नहीं है। और इसमें क्या है, श्रील प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में बोलते हैं कि जो निर्विशेषवाद है, क्योंकि इसमें रस तो है नहीं, ये बड़ा शुष्क है, सब कुछ त्यागो 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 त्यागो, तो जो निर्विशेषवाद है इसमें रस नहीं है, तो ये भद जीव को और प्रेरित करता है कि इस संसार में रस ढूंढे। और संसार में सबसे ऊंचा रस पाया जाता है मैथुन का रस, तो इसलिए ये एक प्रकार से बढ़ावा दे रहा है मैथुन को, ये निराकार बात की भावना, तो इसका एक कुप्रभाव है। तो हम समाज में देखते हैं, या तो व्यक्ति पूरा भौतिकता में लिप्त है कि मैं ही शरीर हूं, या फिर इसमें है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन जो सही सिद्धांत है वो कृष्ण भानामृत का सिद्धांत है, जो श्रील प्रभुपाद ने इतने स्पष्ट शब्दों में दिया है, हम सोच भी नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद से पहले किसी ने भी डंके के शोर पे नहीं कहा कि कृष्ण सब कारणों के कारण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हमारा ये शरीर है, हमारा अस्तित्व है, इसके दो भाग है, एक ये शरीर और शरीर के अंदर की आत्मा। प्रभुपाद कह रहे हैं शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से और मन बुद्धि अहंकार से, ये मेरी बहिरंगा शक्ति है। और जो आत्मा है ये मेरी परा प्रकृति है, सब कारणों के कारण मैं हूं ही कहां। आत्मा भगवान का अंश, शरीर भी भगवान की बहिरंगा प्रकृति, सब कुछ सब कारणों के कारण भगवान है, इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगने चाहिए। सनातन गोस्वामी जब आ रहे थे वृंदावन से जगन्नाथपुरी में, और रास्ते में उनको रोग हो गया और तरह तरह के पस और खून पड़ने लगा, और उन्होंने सोचा मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा। रथ के नीचे आकर चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी सब समझ गए। महाप्रभु बोला कुबुद्धि छड़िया कर श्रवण कीर्तन अचिरात पावे कृष्ण रे चरण। ये कुबुद्धि छोड़ दो। क्यों कुबुद्धि है? तुम सोच रहे शरीर तुम्हारा है, ये शरीर मेरा है, इस शरीर से मैंने कहीं धर्म की स्थापना करनी है। इसलिए एक भक्त को क्या सोचना चाहिए, शरीर मेरा नहीं, सब कुछ किसका है? भगवान का है। हम ये तो मान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, ये बड़ा आसान है समझना, मैं हाथ नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरा पांव है, ये मेरी कार है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं और ये शरीर भी मेरा नहीं है। हम तो ये तो मान लेते हैं मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ये मान रखते हैं शरीर मेरा है। अगर शरीर मेरा है तो शरीर से जुड़ी वस्तुएं भी मेरी हैं,
तो पहले मैं भोग करूंगा, कुछ प्रसाद बचा तो भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ये है ना मानसिक। लेकिन वास्तव में क्या है, सब कुछ भगवान का है। जो भक्त है इस पूरे संसार को प्रसाद के रूप में देखता है, और जो एक भौतिकवादी व्यक्ति है इस पूरे संसार को भोग के रूप में देखता है। वो सोचता है भगवान ने सारी सृष्टि की रचना मेरे भोग के लिए की है, लेकिन भक्त जानता है नहीं, सब कुछ भगवान का है। कण कण में भगवान व्याप्त हैं, और एक एक आइटम को भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, अगर ये सिद्धांत हम समझ जाएं, तो हम हर वस्तु का आदर करेंगे, जड़ का भी और चेतन का भी। क्योंकि जड़ वस्तु को भी क्या देखेंगे, दिव्य रूप में देखेंगे, ये भगवान की शक्ति है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। और जो चेतन है वो भी भगवान का अंश है, इसको भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो क्या होगा, हम हमेशा सबको आदर देंगे। और इसलिए जो असली हमारी जो सिद्धांत है वो क्या है, कि हम माया से तुरंत निकल सकते हैं जब हम भगवान के शरण लेंगे। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंती थे। और इसी श्लोक को बड़े अच्छे ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय का 33वीं पर्याय है। तो इसमें बता रहे हैं चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को, कृष्ण तुम्हार हैया यदि बलि एक बार ही हम राधा राधिकरमन जी को बोल दें कि मैं आपका हूं, बस फिर क्या होगा, माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार। भगवान क्या करेंगे, हमें माया के बंधन से मुक्त कर देंगे। इसके भवानुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुरंत व्यक्ति माया के चुंगल से छूट जाता है अगर कोई सीरियसली और सिंसियरली एक बारी भगवान को बोल दे, हे मेरे प्रिय कृष्ण, हालांकि मैं आपको भूल गया कई कई वर्षों से और इस भौतिक जगत में हूं, आज मैं आपकी शरण ले रहा हूं और मैं आपका बहुत ही निष्ठावान भक्त हूं, सेवक हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये शीला प्रभुपाद जी ने इसका भावानुवाद किया, बहुत सुंदर प्रार्थना है। हम भगवान के सामने जाएं और यही बोलें कि मैं आपको भूल चुका हूं और इस माया में पड़ा हूं, कहीं कहीं जन्म बीत गए, लेकिन अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, सीरियसली और सिंसियरली प्रार्थना करें। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुरंत भगवान हमें माया से मुक्त कर दे। देखिए कितना आसान है, और निराकारवादी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, माया को छूना नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं। शिला प्रभुपाद जी के पास उनके एक शिष्य आए, बोले एक बहुत बड़े स्वामी जी आए हैं, बड़े विद्वान हैं, उनको कोई पैसे भी देता तो वो हाथ नहीं लगाते, ये माया है, माया है, माया है। प्रभुपाद ने बोला एक नंबर का धूर्त है, मेरे पास ले आओ सारे पैसे, मैं ऐसे पकड़ूंगा उसको, मैं दोनों हाथ लगाऊंगा और भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ये धूर्त। और जो साधारण लोग होते हैं वो समझते हैं ऐसे जो त्यागी हैं, बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं, ये छूते भी नहीं। और फिर हम वैष्णवों को देखते हैं क्या गुस्सा करते रहते हैं, रास्कल बोलते रहते हैं, ये सब पैसे के पीछे भागते रहते हैं, नहीं वो समझते नहीं है। भक्तों को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मंदिर निर्माण करना था, तो एक ब्रह्मचारी भाग रहे हैं, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, भाग दौड़ करते करते अपॉइंटमेंट मिली एक लाला जी के पास। तो लाला जी ने बोला उनको, अरे स्वामी जी आप भी माया के पीछे ही भाग रहे हो, आप में हमारे में क्या अंतर है, है ना। तो वो ब्रह्मचारी बड़े स्मार्ट थे, कृष्ण भक्त अति चतुर, बोले बिल्कुल ये भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हो, हम भी भाग रहे हैं। तो उदाहरण दिया, अगर आप ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर देते हैं और 60 किलोमीटर की स्पीड है और आप 80 पे चला रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले को आपको पकड़ना, तो कितनी स्पीड में चलना पड़ेगा, 100 की स्पीड में। बोला आप जितनी तेज आप भाग रहे हैं उससे तेज हमें भागना पड़ता है आपकी लक्ष्मी को पकड़ने के लिए। तो इसलिए अक्सर लोग नहीं समझते, अक्सर लोग समझते हैं आध्यात्मिक जीवन का अंतर है, अर्थ है त्याग, त्याग कुछ नहीं करना। लेकिन आध्यात्मिक जीवन बहुत डायनेमिक है, जो एक अच्छा भक्त है वो सब कुछ भगवान की शक्ति के रूप में देखता है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाता है। तो इसको एक चित्र के द्वारा हम आपको दिखाते हैं, एक डायग्राम के द्वारा। तो दो प्रकार के मत हैं, इस तरफ है भोग, उस तरफ है त्याग। जो भोग करने वाला व्यक्ति है वो बहुत सक्रिय है, इंद्र तृप्ति में हमेशा एक्टिव है, और जो त्याग वाला व्यक्ति है शुष्क वैराग्य, प्रपंच कत्या बुद्धिया हरि संबंध वस्तु न मुमुक्षुभ परित्यागो फल्गु वैराग्य कथ्यते। फल्गु वैराग्य उसका दिखावटी वैराग्य, शुष्क वैराग्य, नहीं छूंगा नहीं छूंगा क्यों का। लेकिन जो भक्त है वो बड़े स्मार्ट है, वो सक्रिय भी रहते हैं और वैरागी भी रहते हैं, वो सक्रिय वैराग को बोलते हैं युक्त वैराग्य, और यही गीता का सार है, यही भक्ति योग है। अर्जुन भी यही कंफ्यूज था, अर्जुन भी कर्म और ज्ञान को मिक्स नहीं कर पा रहा था। अर्जुन सोच रहा था ज्ञान का मतलब है कर्म का त्याग करना और कर्म का मतलब है बंधन में फंसना। तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में अर्जुन का यही संशय था। तो भगवान ने इसी से क्लियर किया कि तुम एक्टिव भी रहो लेकिन त्यागी भी रहो, वैरागी भी रहो, यानी कि खुद फलों को नहीं भोगना, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। ये प्रभुपाद जी की मानसिकता थी। प्रभुपाद जहां भी गए उन्होंने उसको देखा। एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो उन्होंने कुछ प्लांट्स दिखाई दिए। प्रभुपाद ने बोला विच इज दिस काइंड ऑफ प्लांट, तो उनके शिष्य ने बोला प्रभुपाद ये तो यूजलेस है। प्रभुपाद ने बोला यू आर यूजलेस, इस सृष्टि में कुछ भी यूजलेस नहीं है, सब भगवान की सृष्टि है, कुछ ना कुछ इसका उपयोग जरूर होगा। तो भक्त इस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन इसके लिए भक्ति सिद्धांत सेठ कुमार बताते हैं ये सक्रिय वैराग युक्त वैराग्य के लिए बहुत आध्यात्मिक ईमानदारी चाहिए, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी चाहिए। जब तक ये हमारी दृष्टि विकसित ना हो हमें पदार्थ और आत्मा में भेद करना चाहिए। इसका उदाहरण सनातन गोस्वामी जी के जीवन से मिलता है। सनातन गोस्वामी जी के पास वो चिंतामणि थी, है ना, जिसको किसी से भी छूते थे वो सोना बन जाता था। जब उनके पास ब्राह्मण आया, दरिद्र ब्राह्मण आया, बोले मुझे आप सबसे महंगी चीज दीजिए, तो उन्होंने बोला जाओ कूड़ेदान में पड़ी है, है ना। तो कूड़ेदान में देखा तो वो बस मिल गई और उसने करके देखा हर चीज सोना बदल रही है, तो बड़े खुश हो गए। फिर बाद में उन्होंने सोचा इससे कीमती भी कोई चीज होगी इनके पास, तभी तो उन्होंने कूड़ेदान में फेंक रखी है। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उस ब्राह्मण को हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो वहां प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी भी उस मणि को यूज करते और बहुत बढ़िया भगवान के लिए मंदिर बनाते, धड़ाधड़ फटाफट बनाते, जो भी करते। वो तो बहुत पहुंचे हुए भक्त थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो सनातन गोस्वामी प्रभुपाद लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी हमारे सामने एक गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं हम सबको ये सिखाने के लिए। जब तक आपकी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित नहीं हुई है तो आप ये भेद कीजिए, ये पदार्थ है, मैं इसको अपने भोग के लिए कहीं यूज ना कर लूं, इससे थोड़ा दूर रहूं। लेकिन धीरे धीरे हमें इस स्तर पे पहुंचना है। तो इसलिए इस युक्त वैराग्य की प्रैक्टिस कुशल मार्गदर्शन में होने चाहिए, वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन में होने चाहिए। अन्यथा, क्योंकि हमारी भोगने की प्रवृत्ति है, बहुत से चांसेस होंगे कि हम युक्त वैराग्य के नाम पे भोग करेंगे, है ना। तो इसलिए ये सही सिद्धांत है और इससे हम हमेशा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये करने के लिए हमें हमेशा दासों के भाव में रहना है। तो मृतासुर जी की यही प्रार्थना है, मृतासुर युद्ध भूमि में ये प्रार्थना कर रहे हैं, हम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासा भवास्मि भूया, मनोस्मरेत आशुरपतेर गुणास्ते गृणीत वाका कार्य करोति कायम। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं दोबारा से दासों का दास बन जाऊं, अभी तो मैं असुर योनि में आ गया, मैं दोबारा से आपका दासों का दास बन जाऊं। और वो बन के क्या करूं, मन से आपके गुणों का स्मरण करूं, वाणी से आपके गुणों का गुणगान करूं और शरीर से आपकी सेवा करूं, है ना। जब इस चेतना में रहेंगे तो हर वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में देखेंगे और हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ना तो हम उसका भोग करेंगे ना उसको हम त्यागेंगे। असली चीज क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, परम ब्रह्म असली चीज है जो सब कारणों के कारण है। तो कृष्ण सब कारणों के कारण है, हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखना है, हर परिस्थिति को कृष्ण से संबंधित देखना है, हमारे जीवन जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसको कृष्ण से संबंधित देखने का प्रयास करना है। क्योंकि कृष्ण हमारे परम मित्र हैं, कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। हमारे जीवन में कुछ दुर्घटना घटती है तो हम सोचते हैं अरे कृष्ण है कि नहीं, तो ये कौन सी फिलॉसफी हो गई, कर्म मीमांसा फिलॉसफी बीच में आ गई कि अरे भगवान ऐसे हो सकते हैं, तो भगवान है ही नहीं, तो हम भगवान को नकार देते हैं। जो भौतिक परिस्थितियां हैं इसको ही सब कुछ मानना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जीवन में संकट आए या हमारे जीवन में सुख आए, सब किसकी कृपा है, भगवान की कृपा है। ये ऐसी दृष्टि विकसित करने के लिए, अगर हम संकट के समय बोलेंगे भगवान ने हम पे अत्याचार किया, यानी कि हम भगवान को नहीं मान रहे हैं, यानी कि हम मान रहे हैं कि भगवान से ऊपर एक शैतान है, उसकी ज्यादा चलती है, भगवान की कम चलती है, इसलिए भगवान को नकार रहे हैं, तो वो कर्म मीमांसा सिद्धांत हो गया। तो इसलिए दिखने में बड़ा सरल लग रहा है, जी बिल्कुल ठीक बात है कर लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, है ना। इसलिए हम सबके अंदर निर्विशेषवाद घुसा हुआ है, हम सबके अंदर कर्म मीमांसा घुसी हुई है, इस सबको निकालने का एक ही तरीका है, प्रभुपाद जी के आदेशों का अच्छे ढंग से पालन करें और बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रतिदिन अपनी साधना को अच्छे ढंग से करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, शरीर भी ब्रह्म है, आत्मा भी ब्रह्म है, क्योंकि ये सब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, है ना? शक्ति और शक्तिमान, शक्ति भी शक्तिमान के समान ही है, तो इसलिए इस ढंग से ब्रह्म है। जैसे भगवान गीता में बता रहे रसो वप्सु कौन्ते, कि मैं जल का रस मैं हूं, प्रभास्मि शशि सूर्यो, और सब सूर्य और चंद्र का तेज भी मैं ही हूं, है ना? पुष्पों में जो वनस्पति में गंध भी वो रस भी मैं हूँ। तो सब जगह भगवान अपना ऐश्वर्य बताने, किस प्रकार से मैं सर्वव्यापी हूँ। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं, तो इसलिए उसको भगवान के रूप में देख रहे हैं, हालांकि वो भगवान नहीं है। माया तेता मेदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, है ना? तो मायावादी बोल रहे हैं कि सब भगवान है, बोले सब भगवान नहीं है, सब भगवान का है, सब भगवान की शक्ति है।
रामायण में भी ऐसे सुनते हैं कि भगवान कहते हैं कि कोई मुझे एक बार बोले तो मैं उसकी हमेशा रक्षा करता हूँ, कोई एक बार बोले कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, जैसे इस तरीके से सिमिलर वर्ड्स हैं। लेकिन लेट अस से हम बोलते भी हैं और जो भी सिंसेरिटी है उसमें भी बोलते हैं, लेकिन फिर माया में फंस जाते हैं। तो इस वाक्य में कैसे वाक्य पूरा होता है, कैसे जैसे आप बता रहे थे सिंसियरली और सीरियसली, कि इसके बाद माया में वो जीव नहीं फंसता एक बार भगवान को बोलने से, ऐसा कोई कैसे समझें इस चीज को?
हाँ, जो मेरी इसमें समझ है, मैंने भी इस पे मनन किया था कि एक बार हम बोल देते हैं फिर हमसे गलती हो जाती है, लेकिन फिर बोल रहे हैं, अगर फिर बोलने की भी हिम्मत आ रही है, इसका मतलब भगवान बचा रहे हैं। हालांकि मैंने भगवान से प्रार्थना की, जितनी भी सिंसियरिटी या सीरियसली बोल रहा हूँ कि भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरा उद्धार कर दिया, मैं आपकी सेवा करूँगा, ये बोल के फिर मैं इन तित्ती में लग जाता हूँ, भगवान को भूल जाता हूँ, नहीं अगले दिन आके फिर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ तो अगले दिन आ पा रहा हूँ, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और ये प्रयास करते रहें, बार बार बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें, जितना बोलेंगे, जितनी इंटेंसिटी से देखें, हमारी इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी अगर हम सीरियसली बोल रहे हैं। और यही प्रोसेस है, इसको बोलते 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 ही हमारा उद्धार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बोलते ही तुरंत तीनों गुणों से मुक्त हो जाऊँगा, है ना? भगवान का प्रोसेस है, भगवान हमें और कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो भगवान ग्रेजुअली हमें अपलिफ्ट कर रहे हैं। नहीं, वाक्य बिल्कुल ठीक है, भगवान का तुरंत मतलब तुरंत, भगवान तो असीमित है, भगवान का तुरंत ये जन्म भी हो सकता है, अगला जन्म भी हो सकता है, तुरंत बोल, तो हमें धैर्य रखना है, हम भी चाहते हैं नहीं जैसे मैं चाहता हूँ वैसे, तुरंत मतलब भगवान करेंगे। वो मुकुंद को बोला 1 करोड़ जन्म के बाद, उछल पड़ा, 1 करोड़ जन्म के बाद करेंगे तो उसे बहुत है। यह समृद्ध गौरव
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जिस प्रकार से आपने बताया, कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि सुख और दुख भाग्य के कारण या भगवान की इच्छा से ही हमको प्राप्त होते हैं, या सब कुछ भगवान की कृपा का ही, कृपा के रूप में प्रकट हो रहा है। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन था, मैं समझना चाह रहा था, महाभारत में जब गैम्बलिंग मैच हुआ था, जुआ खेला गया था, उस समय विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में चर्चा होती है, उस समय धृतराष्ट्र भी यही बोलते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उससे हम, उसके अलावा हमको प्राप्त नहीं हो सकता, सुख लिखा है तो सुख आएगा, दुख लिखा है तो दुख आएगा। यहाँ पर जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है उससे हम परे हो जाते हैं, तो इसके विषय में थोड़ा सा बताइए कि हमारी अपनी जिम्मेदारी कितनी बनती है और इस कथन को किस रूप से अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
ठीक बात है पवजी, अच्छा है आपने बोला। धृतराष्ट्र भाग्य का उपयोग कर रहा था गैर जिम्मेवार बनने के लिए, है ना? भाग्य की आड़ लेकर वो अपनी आसक्ति को छुपा रहा था, है ना? और हमें कार्य ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ मेरे प्रयास पर निर्भर है और परिणाम के लिए भगवान की कृपा पर निर्भर होना चाहिए, है ना? विद्यार्थी ये बोले जो भाग्य में होगा नंबर आ जाएंगे, है ना? पूरा प्रयास करें, उसके बाद जो भाग्य में होगा वो भगवान देंगे। कोई भी एक्शन हो, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधक विविधान च पृथक चेष्य देवम च मात्र पंचम, 5 कारण है, उसमें प्रयास है और फिर भगवान की कृपा, दोनों मिक्स है।
इसलिए सैंक्शनिंग भगवान करेंगे, प्रयास तो हमें पता नहीं भगवान हमारा पिछला क्या रिकॉर्ड है, इस जन्म में हमारे पास जो सही एक्शन हो सकता है हम करेंगे। तो प्रयास ऐसे करना है कि सब कुछ मेरे पर निर्भर है और परिणाम के लिए भगवान के सैंक्शन पर निर्भर करना। तो धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर रहा था, धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति आसक्त था तो अननेसेसरली गलत तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा था, फिर बाद में बोला भाग्य क्या करे, तो वो गलत है।
एक और बस क्लैरिफिकेशन, जो आपने बताया भगवद्गीता के श्लोक में पांच कारण है, तो ये पांच कारण क्या बराबर बराबर रहते हैं? जैसे कभी ऐसा लगता है कुछ चीजें पांच ले तो 20% 20%, कैसा है ये, इसको कैसे समझना चाहिए?
कर्मों की इतनी बड़ी गति बहुत गहन है, उसको लीनियर तरीके से नहीं समझ सकते, ये फार्मूला लगाया है, बहुत गहन है। और इसमें निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली है दैवम चैवात्र पंचम, सबसे मुख्य वही है। और हम ये माने कि हमारे प्रयास सबके, वो देव तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो हम भक्ति करेंगे भगवान हमारा भाग्य बदल दें अलग बात है, लेकिन हमारे हाथ में भक्ति करना है और प्रयास करना है। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, गोर प्रेमानंदे।